الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، تو الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے آنے کی اور کچھ بات کرنے کی ہمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. پچھلے دنوں جو بیماری رہی اس میں آپ حضرات نے محبت کرنے والوں نے جس محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جگہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائی. اطلاع ملتی رہتی تھی کہ اللہ کے نیک بندے الحمدللہ دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان دعاؤں کی ہی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روح و صحت کیا. اللہ تعالیٰ کا کرامت سے امید ہے کہ بیماری تقریباً ختم ہے، البتہ نقاہت اور کمزوری چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی. اس کمزوری کی وجہ سے بات کرنے میں ذرا تعب ہوتا ہے، خاص طور سے لمبی بات کرنا. اس لیے پچھلے دنوں کئی ہفتے یہ مجلس موقوف رہی. الحمدللہ سبق پڑھا دیتا ہوں لیکن سبق میں مسلسل بولنا نہیں پڑتا، وقفے وقفے سے بولنا پڑتا ہے، اس لیے اس میں تعب اتنا نہیں ہوتا. اس کے باوجود اتنا ہو جاتا ہے تعب کے واپس جا کر کافی دیر تک آرام کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ سوچا کہ تھوڑا سا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات میں گزر جائے، اور آپ حضرات جو دین کی طلب لے کر یہاں آتے ہیں ان کی طلب کی برکت مل جائے، इस गरज से सोचा कि जितना थोड़ी जो थोड़ी बहुत भी अगर बात हो जाए तो इंशाल्लाह फायदे से खाली नहीं। जैसा कि इससे पहले भी एक मरतबा बीमारी के दौरान कुछ देर एक इतवार को बात की थी और एक हदीस आपको सुनाई थी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नियामतानि मग़बूनुन फीहिमा कसीरुन मिनन्नास अस्सिहत वल फराग। दो नियमतें ऐसी हैं कि उनके बारे में लोग धोखे में पड़े हुए हैं, या यूं कह लीजिए कि घाटे में है। एक सेहत की नियमत और एक फरागत की नियमत। ये हैं तो बड़ी जबरदस्त नियमतें अल्लाह तबारक व तआला हैं, लेकिन लोग धोखे में पड़े हुए हैं। जब ये सेहत की नियमत होती है तो गफलत में गुजार देते हैं, यूं समझते हैं कि बस सेहत है तो रहेगी, तंदुरुस्त हैं तो तंदुरुस्त रहेंगे और कोई जो करने के काम होते हैं उनको टलाते रहते हैं। यहां तक कि जब अल्लाह बचाए सेहत चली जाती है, बीमारी आ जाती है, तो उस वक्त करने की ताकत ही नहीं होती, तो सारा मौका अफलत में जाया जाता है। यही हालत फरागत की है कि वक्त का फारिग होना, फुर्सत होना, ये भी बड़ी नेमत है। जब मिली होती है तो गफलत आई होती है और आदमी उसके औकात को जाया करता रहता है। अगर कभी कुछ तरक्की करने का ख्याल आता भी है तो आदमी टला देता है, तुम्हें कल से करेंगे, परसों से करेंगे, यहां तक कि वो फरागत गुजर जाती है। तो सरकार वालों को अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सेहत और फरागत ये दोनों नेमतें ऐसी हैं जिसमें बहुत लोग गफलत में पड़े हुए हैं, धोखा खाए हुए हैं। सेहत को यूं समझता है आदमी कि ये तो मेरा हक है, ये तो मेरा हक है, और बीमारी का उसे मालूम होता था वो भी नहीं आता, पनाह भी नहीं मांगते अक्सर वो। हालांकि अगर देखा जाए तो इंसान के बीमार होने के इम्कान ज्यादा है बनिस्बत तंदुरुस्त होने के, लेकिन वो वक्त गुजर जाता है, आदमी उसको अपना हक समझ कर गुजार जाता है। तो ये बड़ी अजीम हिदायत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई कि भाई जो सेहत की नेमत है उसकी कदर पहचानो, उसके औकात को सही मतलब पर खर्च करने की कोशिश करो। आज के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हिम्मत हो गई तो मैं शायद महीने डेढ़ महीने के बाद आज थोड़ी देर के लिए दफ्तर भी गया। आजकल दफ्तर नहीं जा रहा था, थोड़ी देर के लिए दफ्तर भी गया तो वहां एक साहब आ गए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो अक्सर व बेशतर आजकल लोगों की जबानों पर भी होती है और दिल में भी होती है। वो कहने लगे कि जी क्या बताएं, क्या होगा, होगा क्या, मेरे मुल्क के जो हालात हैं, इस तरह की हुकूमत हुकूमतें मुसल्लत हैं, इस तरह करप्शन का, रिश्वत सताने का, बदनवानियों का बाजार गर्म है, तो वो इस मुल्क का क्या बनेगा, हम कहाँ जाएंगे। और उसी के साथ वो कहने लगे कि मैं एक बहुत बड़े इदारे का जिम्मेदार हूं, उस इदारे का मुझे बड़ा जिम्मेदार समझा जाता है, मेरे पास उसकी जिम्मेदारी भी है और मेरे पास इख्तियार भी, मैं बड़ा बाख्तियार अफसर हूं उस इदारे का, और इतना बाख्तियार हूं कि वैसे अगर देखा जाए तो जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन हालत यह है कि मैं कुछ कर नहीं पाता, कुछ कोई इस्लाह नहीं कर पाता, कोई अच्छाई रिवाज नहीं कर पाता। उनका मतलब यह था कि जिन लोगों पर, जिन लोगों से वास्ता है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक उनके दिलो दिमाग बिगड़े हुए हैं, ईमानदारी का, दयानतदारी का तसव्वुर नहीं है। अगर कोई अमानत ईमानदारी की, दयानतदारी की बात करो तो ऐसा समझते हैं जैसे किसी और दुनिया की बात हो रही है। तो अगर मैं कोई कदम उठाना चाहूं तो कैसे उठाऊं ऐसे लोगों के साथ जिनका हाल यह, तो क्या बनेगा। अपने दफ्तर में, अपने इदारे में जाता हूं तो वहां बुरा हाल नजर आता है, बाजार में जाता हूं तो वहां बुरा हाल नजर आता है, जिस जगह जाता हूं बुरा हाल नजर आता है, तो हमारा बनेगा क्या, ऐसे में क्या करें। ये बात वो कहने लगे, और ये वो बात है जो तकरीबन सभी लोगों के दिलों में इस किस्म के ख्याल आते रहते हैं, खासतौर से आजकल के हालात। तो मुझे इस मौके पर अपने बुजुर्गों की कुछ बातें याद आ गई, वो मैंने मुख्तसर उनसे भी अर्ज की और आज उनका तकरार यहां पर भी कर लेता हूं। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन्हें समझने की और उसके नतीजे में हमारे अमल दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। देखो भाई, ये जो दुनिया में बिगाड़ फैला हुआ है, ये यूं कह लो हमारे मुल्क में जो बिगाड़ फैला हुआ है, उस बिगाड़ को दूर करना ये तुम्हारे अख्तियार में है, किसी के अख्तियार में कि इस बिगाड़ को एक मरतबा में दूर कर ले। न हुकूमत हमारे अख्तियार में, न इख्तदार हमारे पास, न अगर इख्तदार हुकूमत हो भी तो देखो ये साहब जो जिनकी बात में कर रहा था ये बड़े बाइख्तदार हैं अपने इदारे, लेकिन आवानो अनुसार काम करने वाले जब अगर दुरुस्त न हो तो बड़े से बड़े बाख्तियार आदमी, बाख्तदार आदमी भी फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। तो अव्वल तो हमें इख्तियार हासिल नहीं, दूसरा ये कि अगर इख्तियार हासिल हो भी तो जब तक के उसके आह्वानों अनुसार दुरुस्त न हो तो तन्हा एक आदमी बेचारा अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा उर्दू में मुहावरा। लिहाजा जब ये बातें अपने इख्तियार से बाहर की हैं तो इन्हीं का शिकवा करते रहना, इन्हीं का तज़किरा करते रहना, इनका ही इन्हीं को मौजूद गुफ्तगु बनाना, इससे क्या हासिल। अगर फर्ज करो जमाना खराब हो गया है, लोगों के अंदर खराबियां आ गई हैं, तो क्या तुम्हारे मजलिसों में इसका जिक्र करने से ठीक हो जाएंगे? तो महज तज़किरा करने से क्या हासिल, महज तब्सिरा करने से क्या हासिल। ये तब्सिरा तज़किरा तो दरहकीकत हम लोग जो करते हैं मजलिसों में, ये एक वक्त गुजारी है और अपनी बेअमली का बहाना है। बहाना यह है कि भाई अब सारी दुनिया ही गुजरी हुई है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस जैसी जिंदगी चल रही है उसी तरह चलाओ, जिस तरह गुजर रही है उसी तरह गुजारो, कोई बेहतरी की कोशिश करने की जरूरत नहीं, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहो। यह है इसका सारा नतीजा। और उससे भी ज्यादा खराब यह कि जब मजलिसों में इस किस्म की बातों का तज़किरा ज्यादा होता है तो मायूसी फैलती है, जिसे देखो यही कह रहा है, जिसे देखो यही कह रहा है कि भाई हमारे मुल्क के हालात खराब हैं, हमारे हुकूमत खराब है, हमारे आवाम खराब है, हमारे अंदर बदकारती हो गई है, लड़की को सटानी हो गई है, जिसे देखो यही कह रहा है। जब ये कह रहा है, हर शख्स ये कह रहा है, तो उससे क्या होगा, मायूसी फैलेगी, तो क्योंकि अब तो कोई उम्मीद की किरण है नहीं, कहीं भी नजर नहीं आती, अंधेरा ही अंधेरा है। लिहाजा जब मायूसी हो गई तो मायूसी तो वो चीज है जो इंसान से बुरा काम करा लेती है, जब मायूसी फैल गई तो फिर इस्लाह का रास्ता ही बंद हो गया, दरवाजा ही बंद हो गया। तो इन बातों से फायदा तो कोई है नहीं, नुकसान है। अपना नुकसान यह है कि शैतान इसके जरिए यह बहकाता है कि भाई जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है तो तुम तन्हा क्या कर सकते हो, तुम जैसे जिस तरह जिंदगी तुम्हारी गुजर रही है बस गुजारो और कोई बेहतरी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। अपना नुकसान तो ये होता है कि शैतान का कि इस जाल में आदमी आ जाता है। दूसरे का नुकसान यह, दूसरा नुकसान यह है कि आम मायूसी फैलती है, आम मायूसी फैलती है और मायूसी फैलने के नतीजे में लोग जो है वो फिर उसी तो ये तो नाकाबिल इलाज सूरत हाल है, लिहाजा हमें भी कोई कुछ करने की जरूरत है। लिहाजा इन बातों से कुछ हासिल, हासिल वो है काम जो करने का है। याद रखो कि कौमों के ऊपर हर तरह के वक्त आते हैं, अच्छे भी बुरे भी, धूप भी आती है, छांव भी आती है, अंधेरा भी होता है, रोशनी भी होती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है। अकवाम की तारीख पर नजर डालकर देखो, कभी हालात एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं और बदलते हैं खुद इंसानों के अमल से बदलते हैं। अच्छे अमल होते हैं तो अच्छी तब्दीली आती है, बुरे अमल होते हैं तो बुरी तब्दीली आती है। लिहाजा मायूसी फैलाने से कोई हासिल नहीं, थोड़ी सी उम्मीद के चराग जलाओ, उम्मीद के चराग जलाओ, उम्मीद के चराग इस तरह जलाओ जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तालीम दी। तालीम ये थी कि जब दुनिया का हाल खराब नजर आ रहा हो, इदाराई का शुहम मुताह व दुनिया मुसरत व हवा मुतबा व एजाब कुल्ली राय फालई कभी खास की नस्ति वदा आता अब्राहम। हमको माँ पाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अजीब चार बातें बयान फरमाई। इन चारों बातों को सुनो और अपने हालात का अपने जद्दोजहद का जायजा लेकर देखो कि ऐसा लगता है जैसे सरकारी दुआलम पर नजरम आज का मंजर अपने अल्फाज में खींच रहे हैं कि जब तुम ये चार बातें देखो क्या बातें इदा रायत सुहम वका जब ये देखो कि माल की मोहब्बत लोगों का मुता बन गई है। मुता का माना जिसकी इताअत की जाए जिसकी ताबेदारी की जाए जिसकी बात मानी जाए यानी लोग बात मानते हैं तो कहें कि किसकी मानते हैं माल के मोहब्बत की जो काम करते हैं वो माल की मोहब्बत में करते हैं माल की मोहब्बत माल की हिर्स ये उनका खुदा बयान करता है यानी माल की हिर्स जो कुछ कहते कि ये करो वो करते हैं माल की हिर्स जो कहते कि ना करो वो नहीं करते। पहली बात माल की हिर्स व दुनिया मुखरत और दुनिया को तरजीह दी जा रही है आखिरत दुनिया को तरजीह दी जा रही है आखिरत को कि एक चीज के बारे में साफ साफ नजर आ रहा है कि ये आखिरत के लिए सख्त नुकसानदेह है अगर ये काम मैं करूंगा लेकिन दुनिया के अंदर थोड़ा सा फायदा हासिल हो रहा है तो वो झट उस दुनिया के फायदे की तरफ दौड़ पड़ेगा और आखिरत की नुकसान से बेपरवाह हो जाएगा। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक मरतबा एक साहब थे एक खातून थी उनका लॉटरी में इनाम निकल आया जुबिल इनामी बॉन्ड था इनामी बॉन्ड के अंदर नाम निकल आया सूद है वो होटल में सूद को इस्तेमाल करके तो इनामी बॉन्ड ले रखा था अब वो था कोई पता नहीं कितने 100-200 रुपए का बॉन्ड था उस पर इनाम निकल आया 20-25 हजार। उन्होंने मुझसे मसला पूछा कि ये मैं क्या करूं मैंने बताया मैंने कि भाई हराम है ना जाए 20-25 हजार अव्वल तो वसूल ना करो वसूल अगर कर लिया हो तो सदका कर दो। वो खातून फौरन तैयार हो गई कि अगर ये गुनाह है आखिरत मेरी खराब करने वाला है तो मुझे नहीं चाहिए। तो एक साहब बैठे हुए थे जो उनके भाई थे उन्होंने कहा क्या हमाकत कर रही हो देखो भी ये 20-25 हजार रुपये मुफ्त में मिल रहे हैं और तुम उसको छोड़ रही हो अगर तुम्हें नहीं लेना मैं मुझे दे दूंगा मैं करूं। तो ऐसा ढटाई के साथ और इतनी जरूरत के साथ और शौक और लौक के साथ उस हराम आमदनी को लेने के लिए आदमी तैयार है दुनिया में आखिर कि दुनिया को तरजीह दी जा रही है आखिर को अल्लाह और क्या हवम मुत्तबा। तीसरी बात यह कि नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी हो रही दिल में जो ख्वाहिश आ गए उसके पीछे चल पड़े ये देखे बगैर कि यह हलाल है या हराम है ये देखे बगैर कि यह हमारी इंसानियत और मुरूवत के मुताबिक है या खिलाफ है बस ख्वाहिश नफ्स के पीछे चले जा रहे लोग हवा मुतबा। चौथी चीज वह एजाब कुल जिदी राय की राय और हर शख्स अपनी राय पर घमंड में मुबतला जो दिमाग में आ गया मैं जो समझ रहा हूं वो ठीक दूसरे की बात सुनने को तैयार अपनी राय पर घमंड में मुबतला। आप जरा सोचो ये चार बातें کیسے فرما رہے ہیں سرکار دو عالم اللہ، ہے نا؟ مال کی محبت کی اطاعت کی جا رہی ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے، خواہشات کے نفس کی پیروی ہو رہی ہے، ہر شخص اپنے رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے. کچھ نظر آتا ہے کہ یہی منظر جیسا ہمارے زمانے کا منظر کھینچ رہے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو فرمایا کہ جب یہ چار باتیں پائی جائیں تو فعلی کبھی خاص نہیں، یعنی فرمایا کہ لوگوں کو تنقید کرتے پھرو کہ بھئی دیکھو دنیا سے خراب ہو گئے لوگ، اتنا ہلاک برباد ہو گئے، لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. تبصروں کو نہیں کہا، کیا فرمایا؟ بالی کا بے خاص خط نفس. ایسے موقع پر بس تم اپنے اپنی فکر کرو. اپنی فکر کرنے کی کیا معنی؟ کہ اپنی اصلاح کی فکر کر لو کہ میں درست ہو جاؤں، میری جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، میری اصلاح ہو جائے، میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے بجا لانے لگوں. اس فکر میں پڑھو. ودع کا امر العام، اور عام لوگوں کی بات کو چھوڑ دو، ان کے معاملے کو چھوڑ دو. ان کے معاملے کو چھوڑنے کا کیا مانا؟ کہ یہ تم سے بیٹھ کے مت کرو کہ دیکھو لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ایسا کر رہے ہیں. یہ تبصرے مت کرو، کچھ حاصل نہیں تب کرو گا. اس سے تمہیں بدعملی پیدا ہوگی، عمومی مایوسی پیدا ہوگی، کوئی حاصل نہیں ہوگا. تبصرے مت کرو. ہاں اپنے نفس کے اوپر علی کبھی خاص نفس، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنا جائزہ لو، اپنے غریبان میں منہ ڈالو، دیکھو کہ میرے اندر کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کی فکر میں پڑ جاؤ، اس کو درست کرو. یہ ہے چھوٹا سا نسخہ حضور اکرم نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بتایا ہوا، جو ایسے عمومی بگاڑ کے موقع پر جو علاج بتایا تھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور علاج ہے نہیں. کہ دوسروں کو چھوڑو. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، اپنی خبر لو، جو لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر تم ہدایت پر آ جاؤ. اس لیے ان پر تبصرے کرنا چھوڑ دو، بلکہ اپنی زندگی کا جائزہ لو، صبح سے شام تک کی زندگی کا، میں کہاں کتنا اپنے فرائض کو بجا لا رہا ہوں اور کتنی برائیوں سے بچ رہا ہوں یا مبتلا ہو رہا ہوں. اگر کہیں فرائض میں کوتاہی ہے اس کو درست کرو، اگر کہیں کوئی گناہ کر رہے ہو اس سے بچو، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو. کچھ چلو تو صحیح، آگے تو چلو، اور اگر کہیں مبتلا ہو کسی گناہ میں، وہ چھوڑا نہیں جا رہا، تو اپنی طرف سے کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے نکال دیجیے، گناہ سے نکال دیجیے. مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی حضرت اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سارے گناہ جو ہیں، یہ ساری بدعمالیاں، یہ اندھیرے ہیں، یہ تاریکیاں ہیں، ظلمتیں جو پھیلی ہوئی ہیں. ان ظلمتوں میں جب انسان گر جائے تو کیا ہوگا؟ کہ اگر وہ ایک اپنا سا اپنے عمل سے، اپنے کم از کم اپنے عمل کی حد تک اپنے آپ کو کچھ بہتر بنا لے، کچھ بہتر بنا لے، تو ایک چھوٹا سا چراغ جلا دے گا. یہ چھوٹا سا چراغ جو ہے کم از کم اس جگہ جہاں جل رہا ہے وہاں روشنی پیدا کرے. वहां रोशनी बना गया। और ये जो चराग है ये कभी जुल्मत से समझौता नहीं करता, तारीकी से समझौता नहीं होता। छोटा सा भी हो तो अपने दायरे में अपनी हद तक नूर पैदा करता है। और अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि जब एक चराग छोटा सा जल जाता है तो चराग से चराग जलता है, कोई और चराग भी जल जाए उसकी बरकत से कोई तीसरा भी जल जाए, यहां तक कि फिर वो जो जुल्मत और तारीकी फैली हुई है वो रफ्ता 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 वो नूर में तब्दील हो जाए। तो ये मत समझो कि इतना बड़ा मैदान पड़ा हुआ है तारीकी में डूबा हुआ, मैं इसको कैसे रोशन करूंगा। अरे तुम अपने आप को रोशन कर लो, अपने आप को रोशन कर लो, अपने आप की अपने आप को ऐसा बना लो जिसके अंदर ये रोशनी हो, तो फिर रफ्तार रफ्तार वो आगे बढ़ेगी। इसी तरह अल्लाह ताला की सुन्नत, जब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम दुनिया में आते हैं तो तारीकी ही तारीकी पहली होती है, शिर्क की तारीकी, कुफर की तारीकी, बदअमली की तारीकी वो फैली होती है चारों तरफ। लेकिन नबी आता है वो एक चराग जलाता है और फिर उससे दूसरा चराग जलता है, तो तीसरा जलता है, तो चौथा जलता है और देखते ही देखते रोशनी हो जाती है। तो इस वास्ते मायूस ना हो, मायूसी को करीब ना आने, मायूसी को अपने पास ना पकड़ने दो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर भरोसा करते हुए अपनी इस्लाह की तरफ। क्या इस्लाह? मैं इबादत मेरी कैसी है, क्या मैं उनका हक अदा कर रहा हूं या नहीं कर रहा? अगर नहीं कर रहा तो चलो मैं आज से अज़्म करता हूं कि नमाज बर वक्त पढ़ूंगा, जमात के साथ पढ़ूंगा, मस्जिद में पढ़ूंगा। जब जायजा लेके देखोगे तो पता लगेगा कि नमाज बा जमात की कितनी ताकीर है और मैं कितनी जगह पर गलतियां कोताही करता हूं बा जमात नमाज पढ़ने, उसको दुरुस्त करने की फिक्र करूं। खवातीन हैं उनके लिए जमात तो नहीं है लेकिन बर वक्त नमाज किया जाए, वो इस बात की फिक्र करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि काम धंधे के अंदर लगकर हमने अपने नमाजों के औकात को जाय कर रखा हो, देर से पढ़ते हो, मकलू वक्त हो जाता हो, उसकी फिक्र करें। कहा था अगर वाजिब है तो मैं पूरी ठीक ठीक किताब करके देता हूँ कि नहीं देता, गर्द इबादात का जायजा, मामलात का जायजा लो, आमदनी मेरी सारी सौ फीसद हलाल है, ये तो आराम चीज तो नहीं शामिल हो रही, मशकूक चीज तो शामिल नहीं हो रही, उसका जायजा। लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, उस ताल्लुकात के अंदर मैं आया हूँ, को लिबाद पूरे करता हूँ कि नहीं करता, किसी को मेरी जात से तकलीफ तो नहीं पहुंच रही, किसी को मेरी जात से नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, जाए जाए के देखो अपना। और जहां कहीं इसमें खामी नजर आए तो अपने आप को दुरुस्त करो, झूठ तो नहीं मैं बोलता, बातचीत करता हूँ बातचीत के अंदर झूठ तो नहीं बोलता, गरीबत तो नहीं करता, किसी की दिल आजारी तो नहीं करता, इन सब बातों का जायजा लेके देखो। अगर कहीं जहां जहां कहीं रखना नजर आ रहा है उसको पुर करने की कोशिश, आंखों का इस्तेमाल मैं सही करता हूं या नाजायज करता हूं, बदनजरी में तो मुबतला नहीं हूं, निगाहों के जरिए मैं कोई गुनाह गुनाह तो नहीं करता, अगर करता हूं तो उससे। और इस जायजे के नतीजे में कुछ चीजें तो यकीनन ऐसी होंगी कि जिनको तुम फौरन छोड़ सकोगे, जो महज इस वजह से जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है कि गफलत है, इस्लाह की फिक्र नहीं, इस वास्ते वो जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है, अगर एहतमाम हो तो फौरन छूटे। और कुछ ऐसी भी होंगी कि आदत पड़ गई है बुरी, उसको छोड़ना आसान नहीं, तो उसका रास्ता यह है कि अपनी तरफ से हिम्मत को काम में लाओ और अल्लाह तबारक व तआला से मांगो कि अल्लाह मैं अपनी तरफ से हिम्मत कर रहा हूं लेकिन आपकी तौफीक के बगैर बच नहीं सकूंगा, ऐ अल्लाह मुझे इससे बचा लीजिए। मांगो अल्लाह ताला को पुकारो। अपने हजरत की एक और बात याद आ गई। हजरत फरमाते थे कि देखो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, 3 दिन गुजारे हों मछली के पेट। आप अंदाजा करो एक मुसलमान, एक इंसान को मछली निकल जाए और उसके पेट में चला जाए, क्या हशर बनेगा उसका? अंदर तारीखी ही तारीखी, गंदगी ही बताएं गंदगी, पता नहीं कैसे इंसान किए लगा उसको, चारों तरफ तारीखी, फंस गए वहां। तो क्या किया? फनादा फुजुलमा, कुरान करीम फरमाता है, उन तारीखियों में उसने पुकारा, क्या पुकारा? अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ये कहकर पुकारा। तो फरमाते हैं जब उसने उन्होंने इस तरह करके पुकारा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन फनजैनाहु मिनल ग़म, तो हमने उनको उस घुटन से नजात दी। ये तो वाकया बयान फरमाया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ये हुआ। आगे एक जुमला अजीब फरमा दिया, फरमाया वकदालिका नुंजिल मुमिनीन, वकदालिका नुंजिल मुमिनीन, हम मोमिनों को इसी तरह नजात अता करते। तो हमारे में फरमाते थे कि क्या मतलब हुआ इसका, तो मोमिनों को इसी तरह नजात अता करते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि और दूसरे मोमिन भी मछली के पेट में जाएंगे और मछली के पेट की जुल्मतों का सामना होगा और फिर वो पुकारेंगे और फिर हम उनको मछली के पेट से नजात देंगे? जाहिर है ये मतलब तो नहीं, वो तो एक कस्सा था, वाकया था जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ पेश आ गया, हर एक आदमी को तो नहीं जाना मछली के पेट में। लेकिन मतलब कहने का यह है कि जब कभी तारीखियों में फंस जाओ, जब कभी अंधेरियों में फंस जाओ, तो फिर उन अंधेरियों में फंस जाने का इलाज यह है कि हमें पुकारो, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, पुकारो। तो जब पुकारोगे सच्चे दिल से पुकारोगे तो फिर कदालिका नुंजिल मोमिनीन, सारे मोमिनों को भी हम जुल्मतों से तारीकियों से इसी तरह नजात देंगे। ये सारा माहौल जो जुल्मतों का माहौल है, अंधेरियों का माहौल है, इस सारे माहौल के अंदर भी हल ये है कि पुकारो, अपनी तरफ से अपने हिस्से का काम कर लो, कोशिश करो, हिम्मत को काम में लाओ, अज़्म को काम में लाओ और फिर पुकारो। तो जितना पुकारोगे अल्लाह तबारक व तआला को, जितना अल्लाह ताला से रابطہ कायम करोगे, अल्लाह ताला से रुजू करोगे, अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह उस जुल्मतों से तुम्हें नजात देंगे, उसी तरह देंगे जैसा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नजात दी। तो भाई ये है हल, ये कोई हल नहीं है कि मजलिस से जमाओ और तबसरे करो कि फला जगह ये हुआ था, फला आदमी ने ये किया था, फला आदमी ने ये किया था, फला इतना खा गया, फला इतना चोरी कर गया, फला ने इतना बदनवानी की, ये सब बातें कर करके वक्त जाये करने से कोई हल नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, कोई हल नहीं। रास्ता वो है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाया कि अलैका बिखाफति नफ्सिक व तअ'अक अम्रल हाम, अपने नफ्स की फिक्र करो अपने नफ्स को दुरुस्त करने की कोशिश करो। हम में से कोई नहीं है जो किसी ना किसी ऐब में मुबतला है। कोई है जो ऐब से पाक हो, गलतियों से पाक हो, मासूम हो? कोई नहीं है। ऐब हरेक में है, और जब है तो फिर उसके उस ऐब को दूर करने के लिए कुछ इकदाम तो करो, कुछ सोचो तो सही, कुछ जायजा तो लो। सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी का जायजा लेके देखो कहां कहां मैं गलत जा रहा हूं, कहां कहां मुझसे गलती हो रही है, उसको दूर करने की कोशिश कर लो। यह है जवाब इस बात का कि भाई क्या होगा, क्या होगा हमारा, क्या बनेगा? अरे वो बनेगा जो तुम अपना बनाना चाहोगे, वो बनेगा। ये कहने से कि क्या बनेगा कुछ नहीं होता, बनेगा वो जो बनाना चाहोगे। अगर फर्ज करो तुमने अपनी इस्लाह कर ली और अपने आप को दुरुस्त कर लिया तो इंशाल्लाह तुम्हें कोई गदर नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई गदर नहीं पड़ेगा। इसकी फिक्र करो, इस तरफ लग जाओ। तो भाइयों यही गुजारिश है अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से, फिर हमें इसकी तौफीक अता फरमा कि दिन रात हम अपनी इस्लाह के फिक्र में पड़ जाए। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बादल छट जाएंगे, जुल्मतों का जो बोल वाला है कोई सूरज निकलने वाला है। ये जो रसाला की सुना था रात आती तो अंधेरा चाहता है, लेकिन रात तो इश्कमा होती है दिन का। तो जुल्मतों का जो बोल वाला है कोई सूरज निकलने वाला है, कोई ना कोई निकलेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आएगी, बशर्ते के हम खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार। इन्नल्लाह ला युगयिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगयिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी की हालत पर कभी नहीं बदलते, जबकि तो खुद अपने हालत पर नहीं बदलते। तो इस वास्ते इसकी फिक्र करनी चाहिए हम में से हर एक को। अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से हम सब कुछ की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور أنفسنا. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیا عالم میں حق رکھ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح۔ اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کے کام کو تمام کاموں پر فوقیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان سب کی ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہماری تمام جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.